कह सकता हूं कि प्रेम अगर कभी हो सकता है तो केवल इनसे हो सकता है। प्रेम के एकमात्र पात्र श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण है। संसार में ये तो पाठशाला है, आपको पाठ सीखने के लिए भेजा जाता है बस, कि यहां से सीख कर आओ कि जैसा मोह, जैसी आसक्ति आपको सहज ही अपने सुहृद बंधुओं में होती है, ऐसी आसक्ति प्रभु में हो। जहां से मैंने आरंभ किया कि जाही न चाही कछु कभू तुम संग सहज स्नेह। मां को अपने बालक से सहज स्नेह होता है, पिता का अपने पुत्र में सहज लाड होता है, पत्नी को अपने पति में और पति को पत्नी में सहज आसक्ति होती है, करनी नहीं पड़ती। ठीक ऐसी आसक्ति, सहज आसक्ति प्रभु में हो, और ये गुण, ये कृपा केवल सत्संग से प्राप्त हो, क्योंकि सत्संग किए बिना, संत का संग किए बिना हम नहीं जान सकते कि हमारा भला किसमें और बुरा किसमें है। बिन सत्संग विवेक न हो। विवेक क्या होता है कि अविवेकी व्यक्ति जो या तो सब कुछ ले लेता है या सब कुछ छोड़ देता है, और जबकि प्रभु, प्रेम, भक्ति ये बीच का मार्ग है। आप देखिए दो छोर के बीच में संसार है, अच्छा बुरा, झूठ सत्य, दिन रात, श्वेत शाम, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश और जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच में संसार है, और प्रभु इन दोनों से अलग हैं, इन दोनों से विलग हैं। इसलिए आपको बीच का मार्ग लेना पड़ेगा। यदि कहो कि पूरा संसार छोड़ देंगे तो कहां जाओगे छोड़ के? मैं तो कहने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन व्यासपीठ अधिकार रखती है। मुझे संयोग मिला है बहुत संतों के साथ बहुत निकट रहने का, और मैंने देखा है कि जब घर छोड़ के, संसार छोड़ के प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमारे ब्रिज के एक रसिक संत ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मूंड मुंडाए भजन को और बन बैठे भगवान, अज्ञ जनन सम्मान लग और भई प्राप्ति में हान। बने तो थे बाबा जी, बनने भगवान का भजन करेंगे, और क्या है, धन मान ये सब आता है, मार्ग में आता है। तो आप दुत्कारिये नहीं, और कुछ नहीं करिए, केवल इतना करिए। देखिए श्री हनुमान जी महाराज जब भक्ति स्वरूपा जानकी जी का पता लेने के लिए गए ना, सबसे पहले सोने का पर्वत आया, तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम। हनुमान जी ने कहा पहले मैं काम कर लूं, पहले मैं जानकी जी का पता ले आऊं, तो उसके बाद आके आराम कर लूंगा। ये भैया एक मेरी विनती है पीछे खड़े जो भी हैं कि कोई भी आगे नहीं आए, वहीं से प्रणाम करके पीछे बैठिए। प्रेम से कही जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चलो दो मिनट के लिए भगवान नाम लो मेरे से। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा हे गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा हे गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा।
हे गोपाल
करते थे कि जिसको भगवान नाम संकीर्तन में उसकी अनुभूति नहीं होगी उसको कभी भी नहीं होगी।
हे गोपाल नंदला हे गोपाल नंदला
हे गोपाल नंदला हे गोपाल नंदला
हे गोपाल
की इच्छा यही होगी कि मैं कथा का आरंभ करूं, इसलिए शायद ये व्यतिक्रम आया होगा बीच में। तो केवल इस 3 दिवसीय यज्ञ की इस भूमिका के साथ फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कि आप मौका मिले तो 3 दिन आनंद लें, आए सद प्रेरणा देकर आपको लगे तो किसी और को भी लाएं, लेकिन आए तो अपने चित्त की भूमि तैयार करके आए। यहाँ बीज पड़ने का समय है और मैंने पहले भी निवेदन किया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बीज पड़ने का समय है, आप देखेंगे आपके चित्त में परिवर्तन आएगा, वृत्ति बदलेगी, उसी कृपा का अनुभव करेंगे। इस चिंतन के साथ, इस सद्विचार के साथ आप इस कथा में आए, औरों को भी लाएं और भाव से इस भाव यज्ञ का, प्रेम यज्ञ का प्रसाद प्राप्त करें। इसी भावना के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। और आज मुझे जिनकी कथा कहकर स्वयं भी पावन होना है और आप सबके हृदय तक भी प्रभु के प्रेम का वो छींटा पहुंचाना है, जिनकी कथा मैं कहने जा रहा हूं वो हैं रसिक अनन्य नृपति, वृंदावन नरेश, श्री वृंदावन बिहारी लाल के प्राकट्यकर्ता रसिक अनन्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। और ऐसा ठाकुर जी की प्रेरणा समझिए, कल श्री वृंदावन धाम में श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव था, राधा अष्टमी के दिन ही उनका प्राकट्य हुआ था। और इसलिए मुझे लगा कि आज प्रथम दिवस का आशीर्वाद श्री स्वामी जी महाराज की कथा कहकर हमको लेना चाहिए, क्योंकि श्री बिहारी जी महाराज को तो हम सब जानते हैं और आप सब तो दिल्ली वाले तो वैसे भी बिहारी जी के पड़ोसी हो, आप तो जब कभी घर से निकलते हो तो मंदिर आ जाता है बिहारी जी का, तो लेकिन जिन्होंने ये अमूल्य निधि, जिन्होंने ये प्रेम की निधि हम तक पहुंचाई, हमें दी, जिन्होंने प्यार करना सिखाया, उनकी कथा जो स्वयं श्री बिहारी जी को भी आनंद देने वाली है। बिहारी जी भक्तों के आनंद हैं, बिहारी जी आनंद कंद हैं, बिहारी जी जगत के आनंद हैं, लेकिन जो श्री बिहारी जी को आनंद दे, जो बिहारी जी को आनंदित करे, जो प्रभु को सुखी करे, वो उनके भक्त की ही कथा हो सकती है। भक्त कौन? सीधा सीधा सा अर्थ भक्त का क्या? जो भगवान को सुखी करे, जो प्रभु को सुख देवे, जो स्वप्न में भी उनसे कुछ नहीं चाहिए, जाही ना चाही कछु कभू, कभी भी नहीं, बस तुम संग सहज सने। और केवल उससे हुआ। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, मैंने निवेदन किया, यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। भक्ति का रस आपको अमृतो भवति, अमर, एक प्रेम ऐसा है जो नहीं मरता। बाकी सब जितना इन आंखों से दिखता है, जितना आपका मन चिंतन करता है, सब मिटेगा। वृंदावन नाथ को छोड़कर जो आप सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो सब मिटने वाला है। और वो नहीं मिटेगा तो हम मिटेंगे। प्रेम का देखिए एक मनोविज्ञान है, सीधा सीधा सा जगत के आधार पर आप देखिए, जगत में किसी को किसी से प्यार होता है, कैसे होता है? प्रेम होने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला रूप और दूसरा गुण। प्रथम रूप का आकर्षण और दूसरा गुण में स्थिति, ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो संसार में प्रेम हो जाता है। ये सीधा सीधा सा मनोविज्ञान है प्रेम का, साइकोलॉजी ऑफ लव। और ये भी आप सब जानते हैं कि संसार का हर रूप अधूरा है, आज है तो कल नहीं होगा। और हर गुण, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा गुणी हो, क्योंकि मैंने बताया कि दो चीजों से ही संसार बना है, दो चीजों को लेकर ही आप आए हैं। दोनों कर्म आपके थे तो आप संसार में आए। अगर केवल अच्छे होते तो देवता हो जाते, और केवल बुरे होते तो नरक में पड़ते। बीच का मार्ग, प्रेम का मार्ग केवल संसार की पाठशाला में सीखा जा सकता है। और वैसे भी इस किनारे से उस किनारे पे आपको जाना हो तो नैया में तो बैठना जरूरी है। आप सुनते हो ना, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां बिराजे राधा रानी अलबेली सरकार। तो उस पल्ली पार जाने के लिए इस संसार की नैया में बैठना पड़ेगा। नैया नदिया में रहे ये जरूरी है, पर लेकिन जब नदिया नैया में आ जाए तो गड़बड़ होती है, फिर नैया डूब जाती है। आप संसार में रहें, कोई परेशानी नहीं है, संसार भीतर नहीं आ जाए, हृदय में प्रभु रहने चाहिए, ये आवश्यक है। और संत और क्या बताता है, संत और क्या सिखाता है? क्योंकि इल्म ये आपको संसार की पाठशाला सिखा देगी, लेकिन उस इल्म पे अमल ये आपको संत करना सिखाएगा। या सीधे सीधे शब्दों में प्यार करना, उससे प्यार करना, ये आपको संत करना सिखाएगा। छोटी सी बात कहकर कथा का आरंभ करूंगा कि हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन वृंदावन गए हो। अरे यहां तो सभी गए हैं, जय हो। हजारों लोग नित्य प्रति श्री बिहारी जी महाराज का, श्री राधा वल्लभ लाल का, राधा रमण लाल का दर्शन करते हैं वृंदावन धाम में। लेकिन कभी कभी कोई बिरला, कोई सौभाग्यशाली, कोई बड़भागी ऐसा होता है जिसका दर्शन प्रभु करते हैं। सबकी नजर बिहारी जी पर होती है, लेकिन उनमें कोई सौभाग्यशाली शायद कभी ऐसा होता है जिस बिहारी जी पर जिसकी नजर होती है। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि उम्र जलवों में गुजर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है। सब गोसाई जी को पैसा देते हैं कि हमको आगे खड़ा कर दो, बिहारी जी का दर्शन करना है, वीआईपी गेट खुलवा दो। सबकी कोशिश होती है। और बिहारी जी, तो सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी नहीं। पर बिहारी जी वहां मंदिर में पीछे कोने में खड़े, जो जो दीन जो हीन ये सोच रहा है कि मैं क्या मुख लेकर इनके सामने जाऊं, जिसने अपने हृदय को दीनता के उस गुण से विभूषित कर रखा है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, ए दरबार दीन को आदर। भक्ति के मार्ग में सिद्ध कौन है? जो दीन है वो सिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा सा कहा उन्होंने, और पहला बात क्या कही, त्रिनादपि सुनीचेन, तिनके से नीच जो अपने आप को कर सके। ऊंचा होना क्या कठिन है संसार में? आप पढ़ लीजिए, आप व्यापारी हो जाइए, उद्योगपति हो जाइए, समाज सेवी हो जाइए, राजनेता हो जाइए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप ऊंचे हो जाएंगे। छोटा होना मुश्किल है, दीन होना, हीन होना कठिन है। और आप देखिए, ये तो सीधा सीधा सा सिद्धांत है, आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आए, आपको दिख रहा हो कि दीन है, बेचारा हीन है, भूखा है, तो चित्त में सहज दया आ जाती है ना, किसको दे दो, बेचारा दीन है। और कोई हट्टा कट्टा मांगने आ जाए, आप कहोगे कमा नहीं सकता, ठीक ठाक तो है। तो कोई थोड़ा सा ऊंचा होके दरबार में जाएगा ना, उसके तो कृपा होगी नहीं, क्योंकि कृपा की नहीं जाती, कृपा हो जाती है। आप दीन होके जाइए, आप छोटे होके जाइए, प्रभु की कृपा हो जाएगी। और आपको ऊंचा होना संसार सिखाएगा, छोटा होना संत सिखाएगा। वृंदावन के परम यशस्वी विद्वान और भक्त संत हुए हैं प्रज्ञा चक्षु सूरदास थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज। बड़ा सुंदर चिंतन उन संत का। और एक बार पूर्णिमा के दिन श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में दर्शन करने को जा रहे थे, तो मेरे जैसे किसी मंदबुद्धि व्यक्ति ने कटाक्ष कर दिया, बोले बाबा तो ये सूझे तो है ना, काहे तू भीड़ में परेशान है रहो है, आगे जाके का करेगो। तो बाबा ने बड़ा मुस्कुरा के और बड़ा सहज सा उत्तर दिया कि मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन वो तो मुझे देख लेगा, उसकी नजर तो मुझ पर पड़ जाएगी। और भैया दर्शन कहते ही उसको हैं, जब नजर से नजर मिले, आप उन्हें देखें और वो आपको देखें। और एक तो वृंदावन जब भी कभी जाओ इसके बाद, तो दर्शन करने मत जाया करो, दर्शन करने जाओगे दर्शन करके आ जाओगे। तीन तरीके से लोग जाते हैं वृंदावन, कुछ तो ऐसे होते हैं कहते हैं चलो देख आते हैं, घूम आते हैं, और जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, हाँ जो देखने और घूमने जाएगा वो देख और घूम के आ जाएगा। और जो बीच वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो दर्शन कर आए, वो बेचारे दर्शन करते हैं, पट खुलता है बिहारी जी का और आंख बंद करके प्रार्थना करने खड़े हो जाते हैं। बिहारी जी भी प्रसाद का डिब्बा थमा देते हैं, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मिलने जाते हैं। आप वृंदावन के संतों से सुनिए, वहां के रसिकों से सुनिए, ब्रजवासियों से सुनिए, वो ये कहेंगे चलो बिहारी जी महाराज से मिल के आते हैं, राधा वल्लभ जी से मिल के आते हैं, दर्शन करने नहीं जाते। तो अब के जब वृंदावन जाना, अब के जब बिहारी जी के सन्मुख होने का आपको सुअवसर मिले, तो किसी संत का हो के जाना। धन्ने की बड़ी सुंदर कथा आप सब जानते होंगे, धन्ना ने पत्थर में से प्रभु को प्रकट कर लिया, और बेचारा सीधा साधा जाट था, उसको ये नहीं मालूम था कि इनका करना क्या है। तो ठाकुर जी रोज आ जाते, तो एक दो दिन तो नई नई मिलने की चसक थी, सो बातचीत हुई। तीसरे दिन धन्ने ने कहा अब तो रोज का मिलना हो गया, तो क्यों ना इससे काम ही करा लिया करूं, वैसे भी रोटी भी खा जाए मेरी, आधा खाना मेरा ये खा जाता है, तो आधा काम भी इसको करना चाहिए। तीसरे दिन ठाकुर जी आए तो बोला कि जा थोड़ी मेरी गैया चराया, ठाकुर जी ने चरा दी। चौथे दिन आए बोले जा जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, ठाकुर जी ले आए। अब पांचवें दिन ठाकुर जी ने सोचा भैया इसे सिखाना पड़ेगा, तो मन में डाल दिया धन्ने के कि मैं बुलाता हूं तो आ जाता है, खिलाता हूं तो खा लेता है, काम कहता हूं तो काम कर देता है, लेकिन इसने कभी मुझे गले से नहीं लगाया। तो ठाकुर से कहने लगे कि यार बुलाते थे ठाकुर जी को, बोले यार आज तो मुझे तुझे गले लगाना है। ठाकुर जी ने कहा सब कुछ करूंगा, नौकरी कर लूंगा, लेकिन गले नहीं लगाऊंगा। बोले क्यों? बोले गले मैं उसको लगाता हूँ जो किसी संत का होके मेरे पास आता है, जो किसी भक्त का होके मेरे पास आता है, अर्थात जो प्यार करना सीख के मेरे पास आता है। तो ठाकुर जी ने बताया श्री रामानंदाचार्य जी का नाम कि जाओ उनसे जाकर दीक्षा लो। तो रामानंदाचार्य जी से जाके दीक्षा ली। रामानंदाचार्य जी सिद्ध पुरुष थे, धन्य को देखते ही जान गए कि प्रभु की इस पर कृपा हुई है। तो बोले कि मिलते हो तो क्या कराते हो ठाकुर जी से? बोले महाराज दो तीन दिन तो बातचीत हुई, तीसरे दिन मैंने कहा कि रोज रोज बातचीत से थोड़ी काम चलेगा, पेट भी तो भरना है, चलो थोड़ा इसे गैया चरवा लूँ, लकड़ियाँ कटवा लूँ। तो स्वामी जी ने कहा अरे ये तो प्यार करने वाली चीज है, इससे प्यार किया जाता है। स्वामी जी ने कंठी बांधी, वैष्णव तिलक दिया और बताया कि इनसे कैसे प्रेम किया जाता है, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की कि संत आपको सिखाएगा कि आपको प्रेम कैसे करना है। अगर सीख के नहीं जाओगे ना, अगर संत के होके नहीं जाओगे तो उसके दरबार में जाने का सलीका नहीं मिलेगा आपको, उसके दरबार में जाने का अदब नहीं सीख पाओगे, उसके सन्मुख खड़े होने तक का तरीका नहीं आएगा। मैंने देखा है राधा वल्लभ जी के मंदिर में एक संत आते थे, अब तो पधार गए वो, और जब मुख्य पट खुलता था मंदिर का और अभी पर्दा नहीं खुला होता था तो वो पर्दा हिलता था और वो संत कहते थे अरे जल्दी कर तेरा पर्दा हिलता है मेरा दिल धड़कता है। इसे दर्शन कहते हैं। और किसी किसी की आंखों को दर्शन का सुख नसीब होता है। एक संत ने, रसिक संत ने बड़ा सुंदर लिखा है कि निराली शान रखती है मेरे दिलदार की आंखें, छुरी है या के खंजर है मेरे सरकार की आंखें, वो नादा है जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, वो नादा है जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, न देखी यार की आंखें तो बस बेकार की। प्रथम तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मनुष्य का तन, उसके बाद भरतखंड में जन्म, भारतवर्ष में जन्म, और उसके बाद वृंदावन धाम का मिलना, संतों की कृपा और श्री बिहारी जी का, श्री राधा वल्लभ लाल का, ठाकुर का दर्शन, इससे बड़ी कृपा प्रभु चाहे भी तो नहीं कर सकते। और ये ऐसा जन्म ऐसा जीवन पाकर भी न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। जिसने बिहारी जी के जादू भरे नैना नहीं देखे उसने कुछ नहीं देखा, उसने कुछ भी किया कुछ भी पाया लेकिन कुछ नहीं देखा। ये तन पाके साधन पाके सर्वोपरि साधन वृंदावन धाम पाके, क्योंकि एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। इसमें किसी अन्य धाम की निंदा नहीं है लेकिन वृंदावन की सर्वोत्कृष्टता है। एक बार तीर्थराज प्रयाग गया प्रभु के पास और कहा प्रभु आपने ही मुझे तीर्थों का राजा बनाया है ना? प्रभु ने कहा हाँ। बोले तो सब धाम मुझे प्रणाम करते हैं लेकिन वृंदावन नहीं करता। तो प्रभु ने कहा मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का बाप थोड़ी बनाया है। वृंदावन परितज्जम पादमेकं न गच्छति, एक पग छोड़ के प्रभु नहीं जाते, प्रभु का घर है घटिकरा का मोड़ मुड़ते हो ना जब, तो जो हवा वहां से लग के आती है, ब्रज की रज उड़ के लगती है, वो आपको प्रभु के दर्शन के योग्य करती है। और ब्रज के रसिक संतों ने लिखा है, वृंदावन में जो कबहूं भजन कछु नहीं होए, अरे रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। आइए दो मिनट के लिए भाव से वृंदावन धाम को प्रणाम करिए। ब्रज धूलि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सोनाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करो, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो, अहो राधा वल्लभ बिनती मेरी, मेरे नैना सो नैना मिलाए रहो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। यहाँ व्यासपीठ पे बैठने के बाद देखिए जो कुछ है।